दिन भर 17 जनवरी शुक्रवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। निर्भया गैंगरेप के दोषियों को अब 1 फरवरी को दी जाएगी फांसी। निर्भया की मां ने जताई निराशा।
निराशा हो रही है, जिस तरह से हमें 7 साल से तारीख पे तारीख मिल रही थी, आज उसी तरह डेट बदल के दूसरी डेट मिल गई।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास।
श्रोमणी अकाली दल ने, जो एनडीए का एक दल है, उसने लोकसभा में इस बिल को समर्थन दिया था और यहाँ पे उन्होंने इसके खिलाफ समर्थन दिया।
और विवेचना में आज कहानी मुगल सल्तनत के अभागे शहजादे दारा शुकोह की।
बहुत ही मल्टीफैसेटेड और कॉम्प्लेक्स एक शख्सियत थे, बहुत वार्म हार्टेड थे, जेनरस थे, वेरी ड्यूटीफुल सन, वेरी ओबीडिएंट सन।
लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। निर्भया मामले में दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया गया है। पटियाला कोर्ट ने दोषियों को फांसी देने के लिए अब 1 फरवरी सुबह 6 बजे का वक्त तय किया है। इससे पहले इन चारों दोषियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी दी जानी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने बुधवार को अदालत को बताया था कि एक दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है, इसलिए 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है। शुक्रवार को चारों दोषियों में एक मुकेश सिंह की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। ईरान के प्रमुख नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने लोगों से देशभर में हो रहे सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद एकजुट होने की अपील की है। ईरान में पिछले हफ्ते यूक्रेन का एक विमान गिरा दिया गया था, जिसे ईरान ने अपनी गलती माना था। इसके बाद से देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सालों में पहली बार शुक्रवार की प्रार्थना का नेतृत्व करते हुए आयतुल्ला खामेनेई ने इस घटना को दुखद बताया। उन्होंने अपने 1 घंटे के संबोधन में अमरीकी नेतृत्व को जोकर और झूठा करार दिया। इस दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने ईरान और अमरीका दोनों पक्षों को तनाव कम करने की सलाह दी है। यूक्रेन के विमान के साथ हुई त्रासदी बहुत गंभीर है और इस बात का इशारा है कि तनाव को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से इस क्षेत्र की एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये थे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के शब्द। चीन की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP विकास दर 2019 में 6.1% रही है, जो कि पिछले 3 दशकों में सबसे कम है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने चीन की अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। चीन की GDP विकास दर गिरने के पीछे मांग में कमी, बैंकिंग प्रणाली में समस्या और अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध जैसे कारण बताए जा रहे हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के प्रमुख निंग जीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया,
दो हजार उन्नीस में
6.1% की GDP विकास दर तय किए गए लक्ष्य के मुताबिक ही है। पिछले साल के लिए 6 से 6.5% का लक्ष्य रखा गया था। अगर त्रैमासिक वृद्धि दर के हिसाब से देखें तो पहली तिमाही में वृद्धि दर 6.4%, दूसरी तिमाही में 6.2%, तीसरी और चौथी तिमाही में 6% रही है। हमें उचित वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीतियों से लेकर मौद्रिक नीतियों को ठीक से लागू करने और कुछ अन्य पक्षों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये थे चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के प्रमुख के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने उस गुप्त रिकॉर्डिंग के जारी होने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें यूक्रेन के प्रधानमंत्री उनकी आलोचना कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ओलेक्स्की होंजारूक ने रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद इस्तीफे की पेशकश की थी। इस रिकॉर्डिंग में प्रधानमंत्री ये बोलते हुए सुने जा सकते हैं कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अर्थशास्त्र की सिर्फ प्राथमिक जानकारी ही है। यूरोपीय देश माल्टा के पुलिस प्रमुख ने खोजी पत्रकार डेफनी कैरुआना गोलेक्सिया की हत्या की जांच पर आलोचना के बाद इस्तीफा दे दिया है। माल्टा के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने बताया कि पुलिस प्रमुख लॉरेंस कुटाइयार ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वह अपने पद से हट रहे हैं ताकि पुलिस बल में आवश्यक सुधार शुरू हो सके। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरियाई प्रांत इदलिब में हुआ हालिया संघर्ष विराम लोगों की सुरक्षा करने में असफल हुआ है। BBC समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले में चार दोषियों में से एक मुकेश सिंह की दया याचिका को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दया याचिका खारिज करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया और चारों की फांसी के लिए नया वक्त तय किया। अब इन दोषियों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है। इससे पहले चारों दोषियों के खिलाफ जो डेथ वारंट जारी किया गया था उसके तहत सभी दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी दी जानी थी। नया डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया की मां ने कहा कि दोषियों को फांसी में देरी किए जाने से उन्हें निराशा हुई है।
निराशा हो रही है कि जिस तरह से हमें 7 साल से तारीख पे तारीख मिल रही थी, आज वो उसी तरह डेट बदल के दूसरी डेट मिल गई, तो मुझे तसल्ली नहीं।
निराशा हो रही है?
बिल्कुल निराशा हो रही है।
किसे? कोर्ट से, सरकार से, आरोपियों से?
कोर्ट से भी, सरकार से भी, अपने पूरे सिस्टम से ही।
वहीं दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि उनके पास अभी भी काफी विकल्प हैं और 3 दोषियों की दया याचिकाएं अभी तक दायर नहीं की गई हैं। उन्होंने कहा,
ऑप्शन हमारे पास पवन की SLP है, वो डिसाइड होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट में रोबरी वाला केस 77/17 डिसाइड होना है। उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन पवन और अक्षय की फाइल होनी है और उसके बाद तीनों की मर्सी पिटीशन फाइल होनी है।
इसके अलावा फांसी को लेकर बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। कल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दोषियों की फांसी में देरी के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं आज निर्भया की मां ने कहा कि इस पर राजनीति ना करें। निर्भया की मां के बयान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा, जरा सुनिए।
दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली सरकार के काम थे हमने उसको चंद घंटों में पूरा किया। जैसे अभी कुछ दिन पहले जब उसकी मर्सी पिटीशन आई थी, हमने दिन भी नहीं लगाए, कुछ घंटों के अंदर उसको राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया। तो दिल्ली सरकार का डिले करने में कोई, हम क्यों डिले करना चाहेंगे?
प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया है
वो राजनीति कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे मामलों के अंदर
की माँ भी आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी और
केंद्र सरकार पर भी।
मुझे लगता है कि उनको या तो कोई मिसगाइड कर रहा है। हमारी सरकार क्यों उसको डिले करने की कोशिश करेगी? हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा दी जाए।
निर्भया के दोषियों को फांसी देने पर आरोप प्रत्यारोप। बढ़ते हैं आगे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद जेल में बंद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद आज जामा मस्जिद पहुंचे। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और लोगों से अपील की कि वो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखें। कोर्ट ने उनकी जमानत इस शर्त पर मंजूर की थी कि वो 16 फरवरी तक दिल्ली में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने आज जामा मस्जिद की सीढ़ियों से क्या कहा, जरा सुनिए।
मुल्क की हुकूमत ने जो आज इस मुल्क की सत्ता पे काबिज है, ये कानून पारित करके इन्होंने संविधान की हत्या करने का प्रयास किया है। मैं तमाम मुल्क वासियों से ये अपील करता हूँ कि इस गोरे अंग्रेजों जैसी काले अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ अपना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट जारी रखें, क्योंकि आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए साइन बाग में हमारी बहनें, हमारी माताएं, जामिया में हमारी बहनें, हमारे भाई एमयू में, जेएनयू में, डीयू में, बनारस में, इलाहाबाद में और देश के तमाम राज्यों में, यूनिवर्सिटियों में इस काले कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन मुल्क की तकदीर का, हमारे अस्तित्व का, इस संविधान के सम्मान का, हमारे वजूद का आंदोलन है।
ये थे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जो आज जामा मस्जिद पहुंचे। अगली खबर भी नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी हुई है। केरल के बाद नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पंजाब दूसरा राज्य बन गया है। पंजाब विधानसभा में आज पास किए गए इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लिए जाने की मांग की गई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए मैंने अमृतसर में मौजूद हमारे सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन से बात की।
पंजाब में 2 दिन के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया था और जिसमें बहुत सारे बिल पेश किए जाने थे, जिसमें खास तौर पर जिसके ऊपर नजर थी वो नागरिकता कानून का बिल था। उस कानून को पंजाब के मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने पेश किया। लेकिन उससे पहले कुछ और बिल थे जिनके कारण अकाली दल और दूसरे विरोधी धिर वॉकआउट कर रहे थे जब ये बिल पेश किया गया। और शिरोमणि अकाली दल जो कि बीजेपी का एक साथी है, घटक दल है, उन्होंने इसका समर्थन किया। और मैं यहाँ बताता चलूं कि शिरोमणि अकाली दल ने जो एनडीए का एक दल है उसने लोकसभा में इस बिल को समर्थन दिया था और यहाँ पे उन्होंने इसके खिलाफ समर्थन दिया। ये बीजेपी के लिए एक झटके वाली बात थी। इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना था, इस बिल के मसौदे में ये कहा गया कि धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाला यह बिल भाषा और संस्कृति की पहचान को खतरे में डाल सकता है। और उनका कहना था कि ये धर्म निरपेक्षता के ताने बाने को भी खत्म करता है, यह विभाजनकारी है और नागरिकता कानून स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र के खिलाफ है। इस तरह की बातें उसमें कही गई थी और लोकतंत्र में बराबरी के अधिकार की रक्षा की जाने के बारे में इस बिल में कहा गया। इससे पहले केरला में भी इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, उसका जिक्र भी वहां पे किया गया। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि इस बिल को लेके शिरोमणि अकाली दल का कांग्रेस के साथ जुड़ना इसमें एक नई और बड़ी खबर थी पंजाब के लिए।
पंजाब विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास।
बीबीसी इंडिया बोल।
बीसीसीआई के नए सालाना कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिली महेंद्र सिंह धोनी को जगह। विश्व कप के बाद एक भी मैच नहीं खेलने वाले पूर्व कप्तान का क्या क्रिकेट करियर हो गया है समाप्त? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा होगी इसी विषय पर। 18 जनवरी शनिवार को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1811 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
श्रोताओं, कल शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल में जरूर भाग लें। और अब बढ़ते हैं आगे और आपके पसंदीदा कार्यक्रम विवेचना की ओर। मुगल इतिहास में हिंदू और मुसलमानों को नजदीक लाने की जितनी पुरजोर कोशिश दारा शिकोह ने की थी, उतनी शायद अकबर के अलावा किसी और ने नहीं की। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र होने के बावजूद उन्हें राजगद्दी से न सिर्फ महरूम होना पड़ा बल्कि उनका इतना क्रूर अंत हुआ जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। हाल ही में अवीक चंदा की एक किताब प्रकाशित हुई है, दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग, जिसमें उनके उदय से अस्त होने की कहानी को बहुत रोचक ढंग से बयान किया गया है। आज की विवेचना में रेहान फजल याद कर रहे हैं मुगल सल्तनत के इस अभागे शहजादे को।
मुगल सल्तनत के बारे में मशहूर है कि वहां हमेशा एक फारसी कहावत का बोलबाला रहा है, या तख्त या ताबूत, यानी या तो सिंहासन या फिर कब्र। अगर हम मुगल इतिहास को पलटें तो शाहजहां ने न सिर्फ अपने दो भाइयों खुसरो और शहरियार की मौत का आदेश दिया बल्कि 1628 में गद्दी संभालने पर अपने दो भतीजों और दो चचेरे भाइयों को भी मरवाया। यहां तक कि शाहजहां के पिता जहांगीर भी अपने छोटे भाई दानियाल की मौत के जिम्मेदार बने। ये परंपरा शाहजहां के बाद भी जारी रही और उनके बेटे औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर कलम करवाकर भारत के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया। कैसी शख्सियत थी शाहजहां के सबसे प्रिय और सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह की? मैंने यही सवाल रखा हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग के लेखक अवीक चंदा के सामने।
बहुत ही मल्टीफेसेटेड और कॉम्प्लेक्स एक शख्सियत थे, क्योंकि एक तरफ बहुत वार्म हार्टेड थे, जेनरस थे, ही वॉज अ कम्प्लीट जैसे फैमिली मैन आप अगर कहेंगे, वेरी ड्यूटिफुल सन, वेरी ओबीडियंट सन, और साथ ही साथ सूफी थे। सिर्फ सूफी लीनिंग्स नहीं थे बट ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग सूफी, कादरिया जो सिलसिला है उसके साथ उनका ताल्लुक था शायद थे। तो एक तरफ सब ये, और दूसरी तरफ राजशासन बोलेंगे या सियासत बोलेंगे उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं था उनको, और जो मिलिट्री मैटर्स हैं उसमें भी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं था।
शाहजहां को दारा इतने प्रिय थे कि वो अपने वली अहद को हमेशा सैन्य अभियानों में भेजने से हिचकते रहे और उन्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने अपने दरबार में रखा।
शाहजहां का भी ये बड़ा दिलचस्प चीज था कि एक तरफ जब औरंगजेब महज 16 साल के हैं तो उनको फौज के साथ भेजा जाता है डेक्कन में, जो उस वक्त बहुत ही हॉस्टाइल था। सिमिलरली मुराद बख्श को भेजा जाता है गुजरात, शाह शुजा को भेजा जाता है बंगाल की तरफ। हालांकि जो सबसे बड़े बेटे हैं वो उनके सबसे अजीज हैं, तो ना उनको कोई जंग का तजुर्बा हो रहा है, ना कोई सियासत का तजुर्बा हो रहा है, ना कुछ भी। वो जैसे बोलते हैं ना पापाज बॉय, वैसे मतलब बिल्कुल अपने ही पास दरबार में बिठा के और صبح سے شام تک وہ جو کام میں شرکت فرما رہے ہیں تو دارا کو بھی ساتھ ساتھ اسی میں موجود کریں۔ شاہ جہان کا اتنا زیادہ اس پہ زور تھا کہ دارا شکوہ ہی بننا چاہیے اس کے بعد شہنشاہ، کہ ان ارلی 1650s انہوں نے ایک الگ سا پورا ایونٹ کیا اپنے دربار میں اور ان کو الگ سے تخت پہ اپنے پاس بٹھائے اور ان کو شاہ بلند اقبال کا خطاب دیا اور سب کو اعلان کر دیا کہ یہ میرے بعد بادشاہ بننے والے ہیں۔
28 مئی 1633 کو ایک بہت ہی ناٹکیہ گھٹنا ہوئی جب شاہ جہاں کے سامنے ہو رہی دو ہاتھیوں کی لڑائی ایک درگھٹنا میں بدل گئی۔ وہاں موجود اورنگزیب نے کسی طرح اس ہاتھی پر قابو پا لوگوں کی جان بچائی۔ وہاں موجود دارا شکوہ اس نظارے کو بس دور سے دیکھتے رہ گئے۔ کچھ اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ اس گھٹنا نے ہندوستان کے تخت پر اورنگزیب کے دعوے کی نیو رکھی۔ مشہور اتہاسکار رانا صفوی بتاتی ہیں،
دو ہاتھی لڑ رہے تھے آپس میں، ایک کا نام تھا سدھاکر، ایک کا نام تھا شاید سورت۔ سدھاکر کے سب سے پاس اورنگزیب تھے، دارا شکوہ کافی دور تھے۔ ہاتھی جو ہے جب لڑتے لڑتے ایک دم سے سدھاکر جو تھے اور وہ بڑھتے ہیں اورنگزیب کی طرف، تو اورنگزیب اپنے بھالے سے پھر اس کے سر پہ مارتے ہیں، وہ انہیں گرا بھی دیتا ہے، لیکن پھر جب تک کہ شاہ شجاع بھی آ جاتے ہیں اور شاہ شجاع مارتے ہیں، پیچھے سے راجہ جے سنگھ آ جاتے ہیں۔ اب ان کا کیا منشا تھا، وہ کیوں نہیں آگے بڑھے، یا ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے بات سنبھل گئی ہے، اب یہ سب کہہ نہیں سکتے، لیکن ہاں 15 سال کے تھے اورنگزیب، انہیں ایک موقع ملا اپنی بہادری دکھانے کا۔
دارا شکوہ کی سارجنک چھوی ایک کمزور یودھا اور ایوگیہ پرشاسک کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی یدھ میں بھاگ ہی نہیں لیا۔ کندھار کے ابھیان میں وہ خود اپنی پہل پر گئے جہاں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔
وہاں پہ دو تین چیز ہوتی ہے، ایک تو ان کو بالکل ہی پتہ نہیں ہے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو پرشینز ہیں، جو انٹرنچڈ ہیں، بہت ہی اچھا فورٹیفائڈ ایک پوزیشن میں ہیں، ڈیفینس کر رہے ہیں، ان کے خلاف کیسے لڑیں کوئی جانکاری نہیں۔ اس وقت ان کے پاس بہت سارے لوگ ہیں جن سے وہ صلاح لے سکتے تھے، جیسے جسونت سنگھ جی ہیں، راجوب سنگھ ہیں، اور کسی سے وہ صلاح نہیں لے رہے، بلکہ طرح طرح کے، کوئی یوگی آ گیا، کوئی تانترک آ گیا، کوئی سادھو آ گیا، کوئی صوفی آ گیا، ان سے مانگ رہے ہیں۔ تو فائنلی جب جنگ چالو ہوتی ہے تو بہت بری طرح سے مغل فوج ہار جاتے ہیں۔
شاہ جہاں کی بیماری کے بعد ان کے اتراधिकार کے لیے ہوئی لڑائی میں اورنگزیب ان پر بھاری پڑے۔ پاکستان کے ناٹککار شاہد ندیم کی بات مانی جائے تو اورنگزیب کے ہاتھوں دارا کی ہار نے ہی بھارت اور پاکستان کے وبھاجن کے بیج بوئے تھے۔
ایک طرف اورنگزیب اور مراد بخش کی فورسز ہیں اور دوسرے طرف دارا شکوہ کے فورسز ہیں، اور مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایک ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا برابری کا مقابلہ ہے کہ اس وقت کسی بھی طرف پلٹ سکتا تھا، اور ایک ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ان کے راجپوت لیڈرز تھے اور چیفٹنز تھے، اور رستم خان وغیرہ بھی ان کے فوج میں تھے، مطلب دارا شکوہ کے فوج میں، یہ ایک طرف سے ان کے جو پہلا لائن ہے اورنگزیب کے، اس کو پیئرس کر کے اورنگزیب کے کافی قریب پہنچ جاتے تھے۔ اور اس وقت اورنگزیب کے پاس ایک چوائس ہوتا ہے کہ وہ ریٹریٹ کرے یا پھر وہیں پہ قائم رہ کے جو دشمن ہیں اس کو سامنا کرے۔ اورنگزیب بولتے ہیں کہ میرے ہاتھی کو زنجیر بند کر دو، مطلب چاروں پیر جو ہیں ان کے سارے اتنا زنجیر سے نپٹا دو کہ وہ پیچھے بھی نہ ہٹے، آگے بھی نہ ہٹے، اور ایسے مطلب اپنے جو بھی بچے کچے فوج ہے ان کو سارے کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک دم خدا اے خدا اے خدا بہادر کی حفاظت کیجیے، اور سب کو بول رہے ہیں کہ یہ وقت ہے ابھی اپنے بہادری دکھانے کے لیے۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس کے بعد سے ان کا پھر پلہ بھاری ہو جاتا ہے، ان کو اتنا حوصلہ ملتا ہے اس ایک جو جیسچر ہیں اورنگزیب کا، ایک دم ان دا تھک آف بیٹل، ان دا ہیٹ آف بیٹل۔ اور دوسری طرف دارا شکوہ کا دیکھیے، جن کو کوئی تجربہ نہیں ہے ایکچوئل جنگ لڑنے میں، یہ خلیل اللہ خان کے صلاح پہ بات مان لیتے ہیں کہ آپ ہاتھی پہ ہیں تو آپ بہت اچھے سے دشمن کے جو توپ ہیں یا تیر ہیں اس کا شکار آپ بن پائیں گے، آپ یہ کیوں رسک اٹھا رہے ہیں، آپ اتر کے گھوڑے پہ آ کے सामना कीजिए, और बस बिना सोचे समझे उन्होंने वही मान लिया। और फिर अपने सेना को ये रूमर फैल गया कि खजा खाली है, तो शायद कैप्चर हो गए या फिर शायद मर गए, कत्ल हो गए, तो पूरा तहस नहस मच गया। तो जो भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो रहा था तब तक वो एकदम ख़त्म हो जाता है, उनका हिम्मत पूरा टूट जाता है, और उसके बाद जो बैटल है दैट बिकम्स अ राउट।
इस लड़ाई में दारा की हार का बहुत करीबी वर्णन मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब की जीवनी में लिखा है।
घोड़े पर 4 या 5 मील भागने के बाद दारा शुकोह थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हालांकि औरंगजेब के सैनिक उनका पीछा नहीं कर रहे थे, लेकिन जब भी दारा पीछे की तरफ अपना सिर मोड़ते उन्हें औरंगजेब के सैनिकों के ढोलों की आवाज सुनाई देती। एक समय वो अपने सिर पर लगे कवच को खोलना चाहते थे क्योंकि वो उनके माथे की खाल को काट रहा था, लेकिन उनके हाथ इतने थक चुके थे कि वो उन्हें अपने सिर तक ले ही नहीं जा सके। आखिरकार रात 9 बजे के आसपास वो कुछ घुड़सवारों के साथ चोरों की तरह आगरा के किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उनके घोड़े थके हुए थे और उनके हाथ में कोई मशाल नहीं थी। पूरा शहर शांत था, मानो किसी का शोक मना रहा हो। बिना कोई शब्द कहे हुए दारा शुकोह अपने घोड़े से उतरे और घर के अंदर घुसकर उन्होंने उसका दरवाजा बंद कर दिया। दारा शुकोह मुगल बादशाह की लड़ाई हार चुके थे।
आगरा से भागने के बाद दारा पहले दिल्ली गए और फिर वहां से पहले पंजाब और अफगानिस्तान। वहां मलिक जीवन ने उन्हें छल से पकड़वाकर औरंगजेब के सरदारों के हवाले कर दिया। उन्हें दिल्ली लाया गया और बहुत बेइज्जत करके दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया।
रोम के ज़माने में होते थे कि रोमन जो जनरल्स आते थे और जिनको वो हरा के आते थे, वो सारा कोलोसियम में उनका पूरा चक्कर लगाते थे और सब जलील करते थे उनको कि ये तो हार गया है। ये तो वही वाला सिलसिला उन्होंने किया, क्योंकि लोगों के दिल में, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो दिल्ली हो, ख़ास करके दिल्ली, इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा मोहब्बत था दारा शिकोह के ऊपर, वो तोड़ना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि भाई जितना भरोसा इस पर किया है, जितना प्यार मोहब्बत और इज्जत इसको दिया है, देख ये है इसका हाल।
दारा के सार्वजनिक अपमान का बहुत ही लोमहर्षक वर्णन फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में किया है।
दारा को एक छोटी हथिनी की पीठ पर बिना ढके हुए हौदे पर बैठाया गया। उनके पीछे एक दूसरे हाथी पर उनका 14 साल का बेटा सिफिर शुकोह सवार था। उनके ठीक पीछे नंगी तलवार लिए नजर बेग चल रहा था। दुनिया के सबसे अमीर राज परिवार का वारिस फटे हाल कपड़ों में चल रहा था। उसके सिर पर बदरंग साफा बंधा हुआ था। उसकी गर्दन में ना तो कोई आभूषण था और ना ही जवाहरात। उसके पैर जंजीरों से बंधे हुए थे, लेकिन हाथ आजाद थे। अगस्त की चिलचिलाती धूप में उसे इस वेश में दिल्ली की उन सड़कों पर घुमाया गया जहां कभी उसकी तूती बोला करती थी। इस दौरान उसने एक क्षण के लिए भी अपनी नजरें ऊपर नहीं उठाई और कुचली हुई पेड़ की टहनी की तरह बैठा रहा। उसकी इस हालत को देखकर दोनों तरफ खड़े लोगों की आंखें भर आई।
उसी के एक दिन बाद औरंगजेब के दरबार में ये तय किया गया कि दारा शुकोह को मौत के घाट उतार दिया जाए। औरंगजेब इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगरा के किले में कैद अपने पिता शाहजहां को एक तोहफा भिजवाया। इटालियन इतिहासकार निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में लिखा,
आलमगीर ने अपने लिए काम करने वाले किन्नर एतबार खां को शाहजहां को संदेश भेजने की जिम्मेदारी दी। उस पत्र के लिफाफे पर लिखा हुआ था कि औरंगजेब आपका बेटा आपकी खिदमत में इस तश्तरी को भेज रहा है, जिसे देखकर उसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। पत्र को देखकर तब तक बूढ़े हो चले शाहजहां बोले, भला हो खुदा का कि मेरा लड़का मुझे अभी तक याद करता है। उस वक्त उनके सामने ढक्कन से ढकी एक तश्तरी पेश की गई। जब शाहजहां ने उसे खोला तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि तश्तरी में उनके सबसे बड़े बेटे दारा का सिर रखा हुआ था। वहां मौजूद औरतें ये दृश्य देखकर जोर जोर से विलाप करने लगी। उन्होंने अपने सीने पीटने शुरू कर दिए और जेवर उतार कर फेंक दिए। शाहजहां को इतना जबरदस्त दौरा पड़ा कि उन्हें वहां से दूसरी जगह ले जाना पड़ा। दारा का बाकी का धड़ तो हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया, लेकिन औरंगजेब के हुक्म पर दारा के सिर को ताजमहल के प्रांगण में दफनाया गया। उनका मानना था कि जब भी शाहजहां अपनी पत्नी के मकबरे की तरफ देखेंगे, उन्हें ख्याल आएगा कि उनके सबसे बड़े बेटे का सिर भी वहां सड़ रहा है।
आज दारा शिकोह की मौत के 361 साल बाद उनकी विरासत को अंगीकार करने की मुहिम शुरू हुई है। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर दारा शिकोह की हत्या न की गई होती तो क्या भारत का इतिहास अलग होता।
हाल ही में सितंबर 10 के आसपास यहीं पे दिल्ली पे दारा शिकोह पे स्पेशल एक सिंपोजियम हुआ था और वहां पे ये कहा गया था दारा शिकोह शुड बी सेलिब्रेटेड एज एन एम्बलम ऑफ इंडियननेस और हर एक को दारा शिकोह के बारे में जानकारी होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं इस चीज में सहमत हूँ। हालांकि एम्बलम ऑफ इंडियननेस आप नहीं कह सकते क्योंकि इंडियननेस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड तो 17 सेंचुरी में नहीं आया था, वो तो 19 सेंचुरी के बाद में ही आया था। अगर दारा शिकोह के लाइफ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका जो प्रिंसिपल फिलॉसफी है वो मजमाउल बहरीन वाला, उसको तो हम मानना चाहिए। वो अगर मान नहीं रहे हैं, चाहे अयोध्या के डिस्प्यूट आप देख लीजिए, चाहे अभी भी जो डिसरप्शन है पूरे शहर में CAB को लेके, वो अगर आप देख लेंगे, वो तो दारा शिकोह के बेसिक जो फिलॉसफी था उसी के खिलाफ है। तो अगर दारा शिकोह को सही में उनका लाइफ और उनका लेगेसी और उनका सोच को सेलिब्रेट करना चाहिए तो शुरुआत वहीं पर करना चाहिए।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
रेहान फजल की ये विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। और अब समय है खेल समाचारों का और खेल समाचारों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में राखी शर्मा मौजूद हैं। राखी, दूसरा एक दिवसीय मैच चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजकोट में, बताएं क्या क्या जानकारियां हैं आपके पास।
जी, फिलहाल जो राजकोट में मुकाबला खेला जा रहा है, पहले तो भारतीय टीम की बात कर देती हूँ जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की टॉस हारने के बाद और 50 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 340 रन बनाए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने 341 रनों का लक्ष्य है। और फिलहाल जो क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ जो 69 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ में है मार्कस लबुशान, दोनों क्रीज पर नाबाद डटे हुए हैं और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया टीम का जो स्कोर है 171 रन हो गया है
और सिर्फ 2 विकेट के नुकसान,
बिल्कुल 2 विकेट के नुकसान पर जी। और जो बात करें भारतीय बल्लेबाजी की तो शिखर धवन ने सबसे ज्यादा भारतीय टीम के लिए 96 रनों का योगदान दिया।
एक बार फिर से शिखर धवन ने राखी दिखा दिया है कि हाँ, उनके बल्ले
लगातार दूसरी बार अर्धशतक लगा है उनका इस सीरीज में।
शतक से महरूम रह गए, 90 गेंद खेल के सिर्फ 96 रन बना पाए, एक छक्का जड़ा, 13 चौके मारे उन्होंने लेकिन शतक से बच गए। और विराट कोहली ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है।
बिल्कुल, विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी है की है, कप्तानी पारी खेली है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी KL राहुल की जिन्होंने 80 रन का योगदान दिया है, कप्तान विराट कोहली जिन्होंने 78 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से एडम जंपा आज 3 विकेट लेने में कामयाब रहे और केन रिचर्डसन ने 2 विकेट झटके हैं। तो रोहित शर्मा और शिखर धवन की जो ओपनिंग जोड़ी उतरी, उन्होंने भारत के लिए एक सदी हुई शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी की। 14वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज एडम जंपा इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रहे, उन्होंने रोहित शर्मा को 42 के निजी स्कोर पर LBW आउट कर दिया। शिखर धवन के रूप में भारत को दूसरा झटका लगा, धवन अपने शतक से सिर्फ 4 रन दूर रह गए और उन्हें केन रिचर्डसन ने मिशेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज में जैसा मैंने बताया कि दूसरा अर्धशतक है शिखर धवन का और उनके वनडे करियर का ये 29वां अर्धशतक भी है। धवन ने अपना अर्धशतक 60 गेंदों में पूरा किया। वहीं बात की जाए श्रेयस अय्यर की तो वो विफल रहे हैं एक बार फिर, उन्हें 7 रन के निजी स्कोर पर जंपा ने बोल्ड किया। जंपा ने एक बार फिर विराट कोहली को भी अपना शिकार बनाया और उन्हें शतक नहीं पूरा करने दिया। कोहली ने 76 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से शानदार पारी खेली है
और इस वक्त जो है वो 177 रन बना के 2 विकेट के नुकसान पर 177 रन पे ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है।
बिल्कुल।
और इसके अलावा मोहम्मद शमी और इसके अलावा रविंद्र जडेजा, इन्होंने 1-1 विकेट लिए हैं। अब देखना ये होगा राखी कि अभी कहां किस करवट मैच बैठता है।
बिल्कुल, सीरीज में क्योंकि भारतीय टीम पीछे है तो 0-1 से पीछे है तो उनके लिए काफी अहम है ये मुकाबला।
अब खेल समाचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राखी। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
BBC समाचार। निर्भया मामले में दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया गया है। पटियाला कोर्ट ने दोषियों को फांसी देने के लिए अब 1 फरवरी सुबह 6 बजे का वक्त तय किया है। ईरान के प्रमुख नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने लोगों से देश में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद एकजुट होने की अपील की है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान और अमरीका दोनों पक्षों को तनाव कम करने की सलाह दी है। चीन की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP विकास दर 2019 में 6.1% रही है जो कि पिछले 3 दशकों में सबसे कम है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने चीन की अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने उस गुप्त रिकॉर्डिंग के जारी होने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें यूक्रेन के प्रधानमंत्री उनकी आलोचना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरियाई प्रांत इदलिब में हुआ हालिया संघर्ष विराम लोगों की सुरक्षा करने में असफल हुआ है। बीबीसी समाचार।
आज के कार्यक्रम में इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। कल शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल में मुलाकात होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।